एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम कला इतिहास के दो ऐसे अहम मोड़ों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
जी हाँ।
डाडा और अति यथार्थवाद।
जी।
ये सिर्फ म्यूजियम की दीवारों पर टंगी तस्वीरें नहीं है, ये वो विचार है, वो सोच है जिनकी गूंज आज भी हमारे आसपास सुनाई देती है।
हाँ, और इस दिलचस्प सफर में हमारे गाइड होंगे डेविड हॉपकिंस। उनकी किताब है डाडा और अति यथार्थवाद। ये किताब हमें समझाती है कि कैसे, आप देखिए, पहले विश्व युद्ध की राख से जन्मे इन आंदोलनों ने न सिर्फ कला को बल्कि हमारे तर्क को, सपनों को, यहां तक कि क्रांति की हमारी समझ को भी चुनौती दी।
बिल्कुल। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना तयशुदा, इतना लॉजिकल लगता है, शायद इन थोड़े पागलपन भरे विचारों से कुछ सीखने को मिल जाए, है ना?
हाँ, क्यों नहीं, जरूर।
तो चलिए पहले लेखक डेविड हॉपकिंस से थोड़ी जान पहचान कर लें। हॉपकिंस कोई मतलब साधारण कला इतिहासकार नहीं है। वो ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है
जी।
और उनकी महारत है 20वीं सदी के अवंत कार्ड आंदोलनों पर।
अवंत कार्ड।
हाँ, यानी वो कलाकार और विचारक जो हमेशा कुछ नया, कुछ लीक से हटकर करने की सोचते हैं, जो समाज की, आप कह सकते हैं, स्थापित सोच को चुनौती देते हैं।
सही काम।
और हॉपकिंस की खास बात यह है कि वो इन मुश्किल लगने वाले विषयों को, जैसे डाडा है, अति यथार्थवाद है, या मार्सल डुशैम्प जैसे कलाकार,
हाँ, डुशैम्प,
उनके काम को बहुत ही सरल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं।
बिल्कुल। वो सिर्फ पेंटिंग या मूर्तियों के बारे में बात नहीं करते, वो ये भी बताते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, राजनीति क्या थी, और इन कला आंदोलनों के बीच क्या रिश्ता था। और सबसे अहम बात, वो इन्हें सिर्फ इतिहास की बीती हुई घटनाएं मानकर नहीं चलते,
नहीं,
बल्कि आज 21वीं सदी में भी ये क्यों मायने रखते हैं, इस पर वो काफी जोर देते हैं।
युद्ध चल रहा है यूरोप में, काफी उथल पुथल है।
हाँ, तबाही का माहौल था।
इसी माहौल में ज्यूरिक के एक छोटे से कैफे कैबरे वॉल्टेयर में कुछ कलाकार और लेखक मिलते हैं और यहीं से डाडा आंदोलन की शुरुआत होती है।
जी।
ये एक तरह का विद्रोह था हर चीज के खिलाफ, खासकर उस तर्क और सभ्यता के खिलाफ जिसके कारण वो मानते थे इतना भयानक युद्ध हुआ था।
और हॉपकिंस का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अति यथार्थवाद जो डाडा के बाद आया वो उससे बिल्कुल अलग नहीं था।
अच्छा।
हाँ, बल्कि डाडा ने जो जमीन तैयार की थी, मतलब तर्क को नकारना, कला के नियमों को तोड़ना, अति यथार्थवाद ने उसी पर अपना, कह सकते हैं, महल बनाया। दादा अगर एक धमाका था तो अति यथार्थवाद उस धमाके के बाद बिखरे टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया, कुछ गहरा रचने की कोशिश थी, खासकर सिगमंड फ्रॉयड के विचारों से प्रेरणा लेकर, हमारे मन की जो अनकही अनदेखी दुनिया है उसे समझने की कोशिश।
तो ये समझना जरूरी है कि ये कैसे कड़ी की तरह जुड़े हुए थे।
बिल्कुल, एक विकास था वो।
चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं, जैसे हॉपकिंस ने अपनी किताब में परत दर परत समझाया है। शुरुआत होती है ज्यूरिख से, पहले विश्व युद्ध के दौरान।
जी, कैबरे वॉल्टेयर।
हाँ, कैबरे वॉल्टेयर, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ युद्ध से भागे हुए निराश कलाकार, बुद्धिजीवी सब इकट्ठा होते थे।
हाँ।
ह्यूगो बॉल, ट्रिस्टन ज़ारा जैसे लोग वहाँ अजीबोगरीब कविताएं पढ़ते थे, मतलब ऐसी कविताएं जिनका कोई मतलब ही ना हो, साउंड पोएम्स कहते थे उन्हें।
हाँ, ध्वनि कविताएं, और शोर मचाने वाला संगीत बनाते थे, बेतुके नाटक करते थे, वो ये सब जानबूझकर कर रहे थे।
लेकिन क्यों कर रहे थे ऐसा?
क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस तर्क, जिस समझदारी, जिस सभ्यता पर दुनिया को इतना नाज था, उसी ने तो इस भयानक युद्ध को जन्म दिया था।
अच्छा।
तो उन्होंने तय किया कि वो तर्क को ही नकार देंगे, वो संयोग को, मतलब चांस को अपनाएंगे, अतार्किकता को अपनाएंगे। उन्होंने कहा, हम एंटी आर्ट बनाएंगे, ऐसी कला जो कला की परिभाषा को ही तोड़ दे।
बाप रे।
ये सिर्फ कला नहीं रही, फिर एक तरह का जीवन दर्शन बन गया, स्थापित हर चीज पर सवाल उठाओ।
और ये विद्रोह सिर्फ ज्यूरिख में ही नहीं रुका है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉपकिंस बताते हैं कि बर्लिन में डाडा और ज्यादा राजनीतिक हो गया, बहुत आक्रामक।
राजनीतिक कैसे?
वहां जॉर्ज ग्रोज, जॉन हॉटफील्ड जैसे कलाकारों ने फोटो मोन्टाज का इस्तेमाल किया। फोटो मोन्टाज यानी तस्वीरों को काटना, जोड़ना और उनसे नए मतलब बनाना।
अच्छा, जैसे आजकल मीम्स होते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ज्यादा तीखे और कलात्मक। उन्होंने इसका इस्तेमाल फौज, सरकार और अमीरों का मजाक उड़ाने, उनकी तीव्र आलोचना करने के लिए किया।
दिलचस्प। और न्यूयॉर्क में?
न्यूयॉर्क में डाडा थोड़ा अलग था, ज्यादा बौद्धिक, थोड़ा व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। वहां मार्सेल डुशैम्प जैसे कलाकार थे।
डुशैम्प, उनका नाम तो बहुत सुना है।
हाँ, डुशैम्प ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने बाजार से एक बनी बनाई चीज उठाई, एक पेशाब घर, एक यूरिनल, उस पर दस्तखत किए और कहा ये कला है।
क्या, एक यूरिनल?
जी हाँ, इसे उन्होंने रेडीमेड कहा। ये एकदम क्रांतिकारी विचार था।
मतलब?
इसका मतलब था कि कला चीज बनाने के हुनर में नहीं है, बल्कि कलाकार के विचार में है, उसके चुनाव में है। उसने कला की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
वाकई, ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, और फिर कुलोन में मैक्स अर्नस्ट जैसे कलाकार थे जो कोलाज वगैरह पर काम कर रहे थे, जो आगे चलकर अति यथार्थवाद की तरफ इशारा कर रहा था।
फिर कहानी पेरिस पहुंचती है।
हाँ, पेरिस।
वहां डाडा थोड़ा कह सकते हैं थकने लगा था। वही पुरानी नकारने वाली बातें, वही उकसावे वाली हरकतें दोहराई जा रही थी।
एक ठहराव सा आ गया था।
तभी मंच पर आते हैं आंद्रे ब्रिटन। वो पहले डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे और सिगमंड फ्रॉयड के विचारों से, खासकर अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत उत्साहित थे।
जी, फ्रॉयड का प्रभाव बहुत गहरा था।
उन्हें लगा कि डाडा सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा है, कुछ नया रच नहीं रहा, उसमें कोई सकारात्मक कार्यक्रम नहीं है।
हाँ, और यहीं से अति यथार्थवाद की जमीन तैयार होती है। ब्रिटन और उनके साथियों ने नए प्रयोग करने शुरू किए।
कैसे प्रयोग?
जैसे लोगों को सम्मोहित करना, उनसे लिखवाना, जिसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहा गया, ये देखने के लिए कि उनके अचेतन मन से क्या निकलता है बिना किसी रोक टोक के।
अच्छा,
ये डाडा की जो विनाशकारी ऊर्जा थी ना, उसको एक नई दिशा देने जैसा था। बाहर की दुनिया को तोड़ने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को खोजना, हॉपकिंस इसे एक बहुत जरूरी मोड़ मानते हैं।
और फिर 1924 में ब्रिटन ने अति यथार्थवाद का पहला घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया।
हाँ, पहला मैनिफेस्टो।
इसमें उन्होंने अति यथार्थवाद को परिभाषित किया शुद्ध मानसिक स्वचालितता। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है।
हाँ, है थोड़ा, पर मतलब सीधा सा है, बिना सोचे समझे, बिना तर्क की लगाम लगाए, मन में जो भी विचार आए, जो भी छवि आए, उसे सीधे कागज पर उतार देना, जैसे सपने में होता है।
बिल्कुल, सपने जैसा।
इसके लिए उन्होंने कई तकनीकें अपनाई। ऑटोमेटिक राइटिंग तो थी ही, ऑटोमेटिक ड्राइंग भी थी, जैसे आंद्रे मेसन करते थे। सपनों को लिखना, उनका विश्लेषण करना, और एक मजेदार खेल भी था, एक्सक्विजिट कॉप्स।
एक्सक्विजिट कॉप्स, ये क्या था?
इसमें कई लोग मिलकर एक तस्वीर या वाक्य बनाते थे, लेकिन हर कोई सिर्फ पिछला थोड़ा सा हिस्सा देखकर अपना हिस्सा जोड़ता था, बिना ये जाने कि पूरी चीज क्या बन रही है। नतीजा अक्सर बहुत अजीब और अप्रत्याशित होता था।
ये तो मजेदार लगता है।
हाँ,
उनका ध्यान किस पर था?
सपने, संयोग, पागलपन, कामुकता, और वो चीजें जो हमें अद्भुत लगती हैं, जो रोजमर्रा की दुनिया से परे हों।
तो शुरुआती अत्यथार्थवादी पेंटिंग्स कैसी दिखती थीं?
शुरुआत में वो अक्सर बायोमॉर्फिक होती थी, मतलब प्रकृति के जीवों या अंगों जैसे दिखने वाले अमूर्त आकार, जो उन मीरों की कला में ये दिखता है।
अच्छा, और राजनीति से भी कुछ लेना देना था इनका?
हाँ, उन्होंने कोशिश की, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने की बात की, क्योंकि उनका मानना था कि मन की आजादी और समाज की आजादी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि इस पर उनके बीच काफी बहस और मतभेद भी रहे, वो रास्ता आसान नहीं था।
फिर 1930 के दशक में अति यथार्थवादी कला में एक और मोड़ आता है ना?
जी हाँ, एक अहम मोड़। अब कलाकार बहुत ज्यादा यथार्थवादी तरीके से पेंटिंग बनाने लगे, मतलब चीजें बिल्कुल असली जैसी दिखती थी।
लेकिन
पेंटिंग में होता कुछ ऐसा था जो बिल्कुल असली नहीं लगता था, जैसे कोई सपना हो, एकदम अजीब चौंकाने वाला।
साल्वाडोर डाली।
हाँ, साल्वाडोर डाली इस शैली के सबसे बड़े नाम हैं। उनकी वो पिघलती घड़ियों वाली पेंटिंग द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, वो तो शायद सपने देखी होगी।
हाँ हाँ, बिल्कुल देखिए।
डाली ने एक तरीका इजाद किया जिसे वो पैरानोइक क्रिटिकल विधि कहते थे।
पैरानोइक क्रिटिकल विधि?
हाँ, यानी जानबूझकर ऐसी चीजें बनाना जो दिखे तो असली जैसी, पर हो बिल्कुल अजीब और बेचैन करने वाली।
जैसे किसी भ्रम या वहम को पेंट कर देना।
और रेने मैग्रिट भी थे इसी दौर में।
बिल्कुल,
रेने मैग्रिट भी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार थे। उनकी पेंटिंग्स हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, भाषा और छवि का क्या रिश्ता है। वो पाइप वाली पेंटिंग, यह एक पाइप नहीं है।
हाँ, याद है।
इसी समय अति यथार्थवादी वस्तु का भी चलन बढ़ा, है ना?
हाँ।
सुररियलिस्ट ऑब्जेक्ट, ये रोजमर्रा की चीजों को इस तरह बदल देते थे कि उनका असली मतलब खो जाए और वो कुछ और ही लगने लगे, एकदम विध्वंसक।
जैसे वो फर वाली चाय की प्याली।
हाँ, मिरट ओपनहाइम की वो फर लाइन वाली टी कप, या डाली का लॉबस्टर टेलीफोन। ये चीजें हमें चौंकाती थीं, हमारी सामान्य सोच को, हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देती थी।
फोटोग्राफी में भी ऐसे प्रयोग हुए?
जी, मैन रे ने रियोग्राफ्स बनाए बिना कैमरे के, सीधे फोटोग्राफिक पेपर पर चीजें रखकर। हांस बेलमर की वो गुड़ियों वाली तस्वीरें भी थीं, काफी प्रयोग हुए।
और ये आंदोलन सिर्फ पेरिस तक ही सीमित नहीं रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉपकिंस बताते हैं कि 1930 के दशक में ये दुनिया भर में फैल गया। ब्रिटेन, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, जापान, मेक्सिको, हर जगह इसके थोड़े अलग स्थानीय रूप दिखे।
और दूसरे विश्व युद्ध का क्या असर हुआ?
युद्ध के समय कई बड़े अति यथार्थवादी कलाकार यूरोप छोड़कर अमेरिका और मेक्सिको चले गए।
अच्छा।
वहां उनका असर युवा कलाकारों पर पड़ा, खासकर अमेरिका के एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट्स पर, जैसे जैक्सन पोलॉक, रॉबर्ट मदरवेल। वो ऑटोमैटिज्म से बहुत प्रभावित थे।
और मेक्सिको में
फ्रीडा कालो? हाँ, मेक्सिको में फ्रीडा कालो जैसी कलाकार भी अति यथार्थवाद से जुड़ी या प्रभावित हुईं, हालांकि वो खुद को पूरी तरह अति यथार्थवादी नहीं मानती थीं। उनकी कला में वो स्वप्निल व्यक्तिगत चीजें दिखती हैं।
तो इस पूरे सफर का डाडा से अति यथार्थवाद तक का असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है?
हॉपकिंस के अनुसार डाडा और अति यथार्थवाद ने बाद के कई कई कला आंदोलनों को प्रभावित किया, जैसे सिचुएशनिस्ट इंटरनेशनल, फ्लक्सेस, पॉप आर्ट
और कॉन्सेप्चुअल आर्ट।
हाँ, और खासकर कॉन्सेप्चुअल आर्ट, वो कला जिसमें विचार, कॉन्सेप्ट चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसकी जड़ें सीधी डुशैम्प के रेडीमेड में थीं। और जो सवाल इन्होंने उठाए थे, कला क्या है, वास्तविकता क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है, क्रांति कैसे आती है, वो सवाल आज भी कला और संस्कृति में जिंदा हैं, गूंजते रहते हैं।
तो अगर हम हॉपकिंस के किताब से कुछ बड़े सबक या मुख्य विषयों की बात करें, तो सबसे पहला शायद यही है, तर्क पर सवाल उठाना।
बिल्कुल, ये दोनों आंदोलन उस पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया थे, जो तर्क और विज्ञान को ही सब कुछ मानती थी।
पहले विश्व युद्ध ने दिखा दिया था कि तथाकथित तर्क भी कितना विनाश ला सकता है।
सही बात है।
तो डाडा ने जानबूझकर अतार्किक और अराजक रास्ता चुना।
हाँ, और अति यथार्थवाद ने कहा कि असली सच्चाई तर्क में नहीं, हमारे अचेतन मन, हमारे सपनों में छिपी है।
आज भी हम सोचते हैं ना कि क्या हम हर चीज में जरूरत से ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं जाता?
हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।
दूसरा बड़ा सबक है सीमाओं को तोड़ना।
जी हाँ, कला और जीवन, ऊंची कला और लोकप्रिय संस्कृति, अकेले बनाना और मिलकर बनाना, सोची समझी कला और मन से निकली कला, इन्होंने इन सब के बीच की दीवारों को गिरा दिया।
वो कोलाज, रेडीमेड, ऑटोमेटिक राइटिंग, ये सब तकनीकें कला क्या हो सकती है, इसी सवाल को बदल रही थीं।
और आज हम विज्ञापनों में, इंटरनेट मीम्स में या फिल्मों में भी इन टूटी सीमाओं के असर देख सकते हैं। सब कुछ कितना मिला जुला है।
तीसरा, कला सिर्फ सुंदर या सजावटी नहीं होती, वो राजनीतिक भी हो सकती है, शक्तिशाली।
बिल्कुल, डाडा का गुस्सा हो या अति यथार्थवाद का क्रांति का सपना, ये दिखाता है कि कलाकार समाज को बदलने में अपनी भूमिका देखते थे। वो कला को बदलाव का एक हथियार मानते थे।
अपने देश में भी देखें तो कला हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है।
हाँ, ये परंपरा तो है। और चौथा अहम बिंदु है हमारे मन की गहराइयों और हमारी रचनात्मकता का रिश्ता,
फ्रॉइड वाला कनेक्शन।
हाँ, फ्रॉइड के विचारों ने अति यथार्थवादियों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कला को अपने अंदर के डर, इच्छाओं, सपनों को समझने और व्यक्त करने का जरिया बनाया। इससे ये समझ बदली कि रचनात्मकता सिर्फ हुनर या कौशल नहीं, एक गहरी मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है।
ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने मन के उन अतार्किक या अनदेखे हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं या दबा देते हैं।
और एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिस पर हॉपकिंस ध्यान दिलाते हैं।
वो क्या है?
वो ये कि कैसे ये आंदोलन, जो समाज की स्थापित व्यवस्था, मतलब बुर्जुआ संस्कृति के इतने खिलाफ थे, धीरे धीरे खुद ही म्यूजियम और आर्ट मार्केट का हिस्सा बन गए।
हाँ, ये तो होता है।
ऐसा अक्सर होता है। क्रांतिकारी विचार मुख्य धारा में आकर थोड़े नरम पड़ जाते हैं, अपनी धार खो देते हैं, लेकिन उनका असर दूर तक फैल जाता है।
आज भी कई ब्रांड्स विद्रोही या एंटी एस्टैब्लिशमेंट दिखने की कोशिश करते हैं, शायद ये उसी का एक आधुनिक रूप है।
हो सकता है, ये एक चक्कर है शायद।
किताब में कुछ ऐसी बातें दी हैं जो इन आंदोलनों की आत्मा को पकड़ लेती हैं, कुछ यादगार विचार या पंक्तियां।
हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे डाडा के बारे में कहा गया, डाडा सिर्फ एक कला आंदोलन नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है।
इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये सिर्फ कला बनाना नहीं था, बल्कि हर नियम, हर परंपरा पर सवाल उठाना था, सहजता को अपनाना, विरोधाभास को स्वीकारना और यहां तक कि विनाश में भी कुछ रचनात्मक देखना था। एक रवैया था वो।
और आंद्रे ब्रेतवा का वो मशहूर वाक्य, सौंदर्य आक्षेपात्मक होगा।
हाँ, सौंदर्य आक्षेपात्मक होगा या बिल्कुल नहीं होगा,
इसका क्या मतलब? आक्षेपात्मक सौंदर्य
इसका मतलब पारंपरिक सुंदरता जो सजी संवरी, शांत और अपेक्षित होती है, वो उन्हें नहीं चाहिए थी। उन्हें वो सुंदरता चाहिए थी जो अंदर से निकले, जो चौंका दे, जो बेचैन कर दे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से असली हो, भले ही अजीब लगे, अप्रत्याशित।
अच्छा, बहुत गहरा। और डाडा का मकसद क्या था संक्षेप में?
उनका मकसद था तर्क के धोखों को नष्ट करना और एक निष्पक्ष सत्य की खोज करना।
तर्क के धोखे?
हाँ, उनका मानना था कि जिसे हम तर्क कहते हैं वो अक्सर सच को छुपा देता है, हमें भ्रम में रखता है। इसलिए सच तक पहुंचने के लिए अतार्किक होना, उस तर्क की पोल खोलना जरूरी है।
और अति यथार्थवाद की परिभाषा का सार क्या था? ब्रेटन ने क्या कहा?
ब्रेटन के शब्दों में ये पहले से उपेक्षित सहचर्यों की उच्च वास्तविकता, स्वप्न की सर्वशक्तिमत्ता और विचार के निस्वार्थ खेल में विश्वास पर आधारित है।
थोड़ा खोलेंगे से
मतलब उन जुड़ावों को देखना जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे लोबस्टर और टेलीफोन। सपनों की ताकत को मानना कि उनमें भी सच्चाई है और बिना किसी बाहरी दबाव या तर्क की सेंसरशिप के अपने विचारों को आजादी से बहने देना। ये असलियत से भागना नहीं बल्कि असलियत की गहरी अनदेखी परतों को खोजना था।
वाह, और हॉपकिंस ने इन दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाया है, वो जंगल वाली उपमा।
हाँ, वो बहुत अच्छी उपमा है। हॉपकिंस कहते हैं, अगर डाडा तर्क की जेल को उड़ाना था तो अति यथार्थवाद उन दीवारों के परे के जंगल का नक्शा बनाने का व्यवस्थित प्रयास था।
बहुत खूब, ये एकदम साफ कर देता है। डाडा ने रास्ता साफ किया
और अति यथार्थवाद ने उस रास्ते पर चलकर मन के अनजाने जंगली इलाकों की खोजबीन शुरू की, एक व्यवस्थित खोज।
तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हम आज के दौर में इन लगभग 100 साल पुराने आंदोलनों से क्या सीख सकते हैं? क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना है?
हॉपकिंस की किताब इशारा करती है कि हाँ, बिल्कुल है, कई तरह से।
जैसे?
आइडिया मिल जाए।
ये तो दिलचस्प है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक तरीका।
बिल्कुल, या अति यथार्थवाद की ऑटोमेटिक राइटिंग या ड्रॉइंग। बस 10-15 मिनट के लिए बिना रुके, बिना सोचे, जो मन में आए लिखते जाइए या बनाते जाइए।
फ्री राइटिंग जैसा?
हाँ बिल्कुल, इसे फ्री राइटिंग भी कहते हैं। अक्सर इससे दिमाग खुल जाता है और अटके हुए विचार या वो चीजें जो हम सचेत रूप से नहीं सोच पाते, वो बाहर आ जाती हैं। ये तकनीकें सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, किसी भी काम में नई सोच लाने में मदद कर सकती हैं।
और आलोचनात्मक सोच के बारे में क्या?
वो भी बहुत जरूरी है। डाडा हमें सिखाता है कि हर चीज पर आंख बंद करके यकीन ना करें, सत्ता पर सवाल उठाएं, विज्ञापनों और खबरों के पीछे छुपे मतलब को समझें, प्रोपेगेंडा को पहचानें। और अति यथार्थवाद हमें उकसाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों, अपनी सामान्य लगने वाली मान्यताओं के पीछे की गहरी मनोवैज्ञानिक और वैचारिक वजहों को देखें। आज जब फेक न्यूज और जानकारी का इतना शोर है, ये सोचना और सवाल करना बहुत जरूरी है।
सही कहा, खुद को समझने में भी ये मदद कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, अति यथार्थवाद कहता है कि अपने सपनों पर ध्यान दो। कभी कभी जुबान से निकली गलत बात, जिसे फ्रॉइड स्लिप ऑफ द टंग कहते थे, उस पर गौर करो। अपनी अंदर की आवाज, गट फीलिंग सुनो। इनमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, हमारी असली प्रेरणाएं छिपी हो सकती हैं। अपने अतार्किक या अचेतन मन को जानने से, उसे दबाने के बजाय समझने से, हम ज्यादा पूर्ण और संतुलित बन सकते हैं।
और वो बेमेल चीजों को जोड़ने वाली बात, लॉबस्टर टेलीफोन वाली, उसका क्या इस्तेमाल?
ये तकनीक आज भी विज्ञापन बनाने वाले, डिजाइनर, लेखक, यहाँ तक कि कॉमेडियन भी इस्तेमाल करते हैं।
कैसे?
दो बिल्कुल अलग असंबंधित चीजों को साथ रखने से ध्यान तुरंत जाता है, बात ज्यादा असरदार तरीके से कही जा सकती है या जबरदस्त हास्य पैदा होता है। इंटरनेट पर चलने वाले कितने ही मीम्स इसी सिद्धांत पर तो आधारित हैं।
हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही।
और आखिर में ये आंदोलन याद दिलाते हैं कि कला सिर्फ मनोरंजन या सजावट नहीं, समाज पर टिप्पणी भी है। रचनात्मकता का इस्तेमाल जरूरी मुद्दों पर बात करने और शायद बदलाव लाने की कोशिश करने के लिए किया जा सकता है।
तो डेविड हॉपकिंस की इस गहरे पड़ताल से, इस पूरी चर्चा से, हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर एक चीज चुननी हो, मेरे लिए शायद ये है कि डाडा और अति यथार्थवाद सिर्फ अजीब या अटपटी कला नहीं थी, ये अपने मुश्किल संकट भरे समय से जूझने का, दुनिया को नए नजरिए से देखने का एक गंभीर, बहुत जरूरी प्रयास था। उन्होंने ये दिखाया कि अगर सच में कुछ नया और मौलिक रचना है तो हमें अपनी बनी बनाई सोच, अपनी असलियत की परिभाषा पर ही सवाल उठाना होगा, हिम्मत करनी होगी।
और मेरे लिए जो सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि है वो ये है कि कला हमेशा अपने समय का आईना होती है, इतिहास की प्रतिक्रिया होती है। और कला की परिभाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलती रहती है। डुशैम का शुक्रिया अदा करना चाहिए इसके लिए। साथ ही ये भी कि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, हमारे अंदर का अतार्किक, भावनात्मक, स्वप्निल हिस्सा भी उतना ही असली और जरूरी है, और उसे तर्क के साथ जोड़ने की, समझने की जरूरत है। हॉपकिंस दिखाते हैं कि कैसे इन आंदोलनों ने न सिर्फ 20वीं सदी को बल्कि आज भी हमारी सोच को, हमारी संस्कृति को प्रभावित करना जारी रखा है।
और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन कलाकारों ने हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती दी थी। आज की दुनिया भी कम जटिल और अनिश्चित नहीं है, तो क्या कभी कभी लीक से हटकर सोचना, थोड़ा अतार्किक होना या सपनों और संयोग पर ध्यान देना हमें ऐसे समाधानों या दृष्टिकोणों तक ले जा सकता है जिन पर हमारी रोज की तर्कशील सीधी सोच कभी नहीं जा पाती? सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।